તારીખ 23/12/1993 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 143 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 1 મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
उत्तर दिया कि इस अपेक्षा से ज्ञान को भी कारण कहते हैं, मना नहीं किया है. इस अपेक्षा से ज्ञान को भी कारण कहते हैं, लेकिन यथार्थ में तो अज्ञान रखने वाले को भी ज्ञान तो होता है, लेकिन दृष्टि नहीं होती है. तुम्हारा ज्ञान को गुण कर देते हैं, दृष्टि की मुख्यता करते हैं ऐसी परिस्थिति में. अब हमें तो वाद विवाद में नहीं जाना है, पर जब हमें हमारा एक आत्मकल्याण पूरी मुख्य करके इस बात को विचारना है, तो हम बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमारे मुमुक्षु होने की भूमिका में दृष्टि उल्टी है, विपरीत है, मिथ्या है, तो उसको कारण कैसे बनाएंगे. मेरा प्रश्न है, दृष्टि को कारण और नाम को कार्य कैसे करेंगे. जब जो दृष्टि उल्टी है, मिथ्या है, विपरीत है, पूरी की पूरी अधूरी नहीं है, सबके ज्ञान में वो परिस्थिति नहीं है. ज्ञान में विवेक आता है मिथ्यात्म अवस्था में, विवेक की जागृति मिथ्या ज्ञान की मिथ्यात्म अवस्था में होती है. और इससे आगे लिए तो ज्ञान सामान्य में स्वभाव खुला है, सभी जीवों को आवार गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा वेदन गोचर है. तीसरा कि स्वानुभूति और समय दर्शन के लिए भेद ज्ञान की प्रक्रिया के सिवा किसी को चतुर्थ स्थान का अनुभव हो जाए नामुमकिन है. विज्ञान का प्रोसेस और बिना ज्ञान आत्मा ऐसा है तो प्रकृति का विषय कोई ज्ञान बिना ज्ञान संतान का कोई बात हो सके तो संतान दृष्टि तो कोई जानती नहीं है, कोई समझती नहीं है. एक न्याय से कहे तो दृष्टि अंधी है, उल्टी पड़ती है तो छोड़ती नहीं है, पर तत्व को नहीं छोड़ती है. सूती पड़ती है तो नारकी की वेदना के सात्विक नारकी में भी अपने आत्मा को छोड़ती नहीं है. तो काम ऐसा है कि पूरी ताकत से पकड़ करना. तो संपूर्ण सर्वसंग परित्याग करके मुनि दीक्षा अंगीकार करे तो भी दृष्टि सम्यक नहीं हो गए बात फेल हो जाती है. क्यों? वो तो परतत्व को पकड़ा है तो सम्मुखता ही नहीं सिद्धांत में. तो ज्ञान हो गया कुछ काम में नहीं आया, आचरण काम में, बाह्याचरण काम में नहीं आया, स्वरूपाचरण हो ही नहीं सकता. तो इसी दृष्टि से सिद्धांत की, इस कारण से सिद्धांत की मुख्यता शास्त्रों में बहुत आई है. फिर भी बिना ज्ञान किसी को संतान हो जाए ये बात तो कभी बनती
है.
उसमें क्या है, एक स्टेप में बताना पड़ गया. स्वरूप निश्चय भी स्वविकल्प दशा में स्वरूप निश्चय भी स्वानुभूत पहले होता है वो ज्ञान की पर्याय है. स्वरूप निश्चय जिसको बोलता है, स्वरूप की पहचान जिसको बोलते हैं, स्वरूप का प्रतिभास जिसको बोलते हैं, या ज्ञान में स्वरूप अस्तित्व का ग्रहण बोलते हैं. अलग अलग शब्द है तो पाणिनि ने अस्तित्व ग्रहण भी लिया है, प्रतिभास भी लिया है. 120 गाथा में प्रतिभास लिया है, आत्मसूत्र शास्त्र की 120 गाथा है. तो सभी ज्ञान के पर्याय है, वो भी सभी ज्ञान पहले होती है. पर 751 पत्र में उसको दूसरा संकेत बोला है, कि वो परमार्थ सम्यक दर्शन का अनन्य कारण है, वो ज्ञान की पर्याय है। परमार्थ की अनुभवान से, स्पष्ट अनुभवान से प्रतीत, उसको हम दूसरा शक्ति कहते हैं पर्याय, क्योंकि अनुभवान से लिया है। तो वो जो बात है तो स्वानुभव का सम्यक दर्शन का कारण है, वो भी ज्ञान की पर्याय है। 144 ज्ञात हमें क्या लिया, प्रथम तो श्रुत ज्ञान ना अवलंबन द्वारा ज्ञान स्वभाव आत्मा निर्णय पर्याय से, निर्णय को ही पर्याय से वो ज्ञान की पर्याय है।
क्यों क्रम आता है ज्ञान उद्योग क्रम आता है
उसमें क्या है, ये तो अभी तो भाई विचार करते हैं कि पूर्व पर्याय में श्रद्धा कारण है कि पूर्व पर्याय में ज्ञान कारण है, तो पूर्व पर्याय में श्रद्धा को पूरी विपरीत है, तो ज्ञान में ही ये प्रभाव होता है। तो धारणा ज्ञान जो वर्ष मुक्ता वाला 11 पूर्व का है, इसमें स्वरूप लक्षण हुआ है, स्वरूप की पहचान नहीं आई, स्वरूप का प्रतिभास नहीं आया, स्वरूप की कोई लक्ष्य नहीं बना, तो ये बात जो स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति है स्वरूप दृष्टि रह गया है। स्वरूप दृष्टि हुआ उसको तो कोई अंग पूर्व का ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, कोई स्वरूप निश्चय वाला ज्ञान ये स्वानुभव शून्य प्रश्न का कारण हो जाएगा, ऐसा बनेगा। इसलिए श्रद्धान मुमुक्षु को श्रद्धान कारण और ज्ञान कार्य ऐसा नहीं बनता, उसको तो ज्ञान ही कारण है। और इसकी एक बहुत सुंदर गाथा पंचाध्यायी के उत्तरार्ध में 401 नंबर की है, तो बहुत चर्चा किया है। पंचाध्यायी शास्त्र किसने बनाया, तो शास्त्रकर्ता का नाम अभी नहीं मिल पाया, क्योंकि 1898 में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो ही ग्रंथ बने हैं, 3 ग्रंथ बनाने बाकी रह गए हैं, 5 ग्रंथ बनाना चाहे शास्त्रकर्ता ने, उसमें 2 ही बनाए। उसमें उत्तरार्ध में 401 नंबर की गाथा है, ज्ञान एकम कारण, संस्कृत में सभी गाथा है, ज्ञान एकम कारण साधनादि विधोचिता, साधन की विधि की विषय में, आत्मा के साधन की विधि के विषय में अगर गहराई से सोचा जाए तो, गहरी मीमांसा करने में आवे तो ज्ञान एकम कारण ऐसा दिया है। ज्ञान एकम कारण साधनादि विधोचित, स्वानुभूति एक हेतु, तो सहानुभूति का एकमात्र हेतु मैंने कारण बोला जाता है, इसलिए तस्मात् ज्ञानं परम पदम, इसलिए ज्ञान को हम परम पद कहते हैं। तो पंचाध्याय बहुत ऑथेंटिक शास्त्र बोला जाता है सिद्धांत का, दिव्यानंद योग और अध्यात्म का बहुत आधारभूत बातें इस शास्त्र में मिलती है, और बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम उन्होंने बहुत उसमें भी ये बात किया है। और ये गाथा हमने सोगाने जी को बताई थी जी, और दृष्टि प्रधानता से अपने बातों में जब जब चर्चा करते थे तो मुझे एक विकल्प हुआ कि ज्ञान कारण है और संकाय है वो बात आती नहीं है, और कई लोग विपरीत श्रद्धा में भी मैं द्रोह हूं, मैं कुटस्थ हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं ध्याय हूं लग जाएंगे। तो मैंने बात फिर खुलने के लिए थोड़े प्रश्न चलाए थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो श्रद्धा प्रधानता से बात करने का एक हमारा बोलने की पद्धति वो हो गई है, तो हम तो ऐसे ही बोलते हैं, किसी को कुछ भी लगे हम इसमें भूल क्या है, कोई भूल नहीं। तो हम नींद में वही कुछ होगी तो यही जवाब मिलेगा, तभी तो जा गया अवस्था में। लेकिन तुमने गाथा निकाल करके दिया उसी वक्त पंचायत आई के कुछ साल पहले की बात है, कुछ करीब बात है 28 साल पहले की, 25 साल पहले की बात है, कुछ स्वर्गवास में 25 साल निकल गई है 28 साल हुई। तो गाथा पड़ी पड़ी कुछ सेकंड मौन है, फिर बोले क्या बोले, अनादि अनंत ज्ञानियों को ऐसा ही ज्ञान की स्वानुभूति होती है, तीनों काल में कोई फर्क।
क्या बताया, क्या बोले?
तुमने उन लोगों को बताया था 143 लेके आए थे हमारे पास सोगानी जी का, उन्होंने बोला कि सोगानी जी के साथ चर्चा हमारी हुई है, हमने ये गाथा बताई थी, उन्होंने मंजूर भी किया है, लेकिन ग्रंथ में बात तो सब नहीं आ सकती, सभी प्रश्न ग्रंथ में नहीं आ सकता है, इसलिए बात हमने नहीं दिया है, उनको मान्यता पक्की हो गई थी, बदले नहीं। गुरुदेव के पास हमने बोला, गुरुदेव के पास जाइए आप, गुरुदेव ने स्पष्टीकरण दे दिया, श्रद्धा कारण नहीं हो सकती, बिना ज्ञान श्रद्धा होता नहीं, जब वो समय साल के 17-18 आ गया था ऐसा करते हुए। ज्ञान का जो विषय है उस विषय में बहुत से प्रश्न करते हैं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में विविधता भी है और इनके इतने धर्म प्रसिद्ध हैं कि इस विषय में शास्त्राभ्यास करने वाले को कई प्रकार की गलतफहमियां भी हो सकती है, तर्क वितर्क भी हो सकता है, या हमारे प्रयोजन के विषय में मोक्षवाद प्राप्त क्लैरिटी जिसको आनी चाहिए, स्पष्टता आनी चाहिए, ये नहीं मिलती। मनुष्य में 8वां प्रकरण ज्ञान का इसलिए लिखा है, तो उसमें 14वें स्थान में कहां कहां किस किस प्रकार का कैसा कैसा ज्ञान का भेद प्रभेद प्रत्यक्ष करो, सब एक प्रकार के जो धर्म है सब बात संक्षिप्त में जो है एक ही प्रकरण में वो बात आई है, थोड़ा वो उसका भी ख्याल करने में तो बहुत से बातों का प्रश्न तो निकल जाएगा या थोड़ा समझ में स्पष्टता आ जाएगी, इस विषय को आगे कर लेंगे। अच्छा अपने स्वपदार्थ में प्रतिबंध मुक्त प्रतिबंध से मुक्त होने में अपने में अपना परिणाम को लगाना पड़ता है या समूह करने का होता है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं हो सकता, यही कारण है। दर्शन में श्रद्धा किसको कहते हैं कि कोई भी पदार्थ के विषय में यह ऐसा ही है ऐसा प्रतीति भाव को श्रद्धान कहते हैं, मान्यता को भी श्रद्धान कहते हैं, प्रतीति भाव को भी श्रद्धान कहते हैं। ऐसे श्रद्धान के विषय में दो तीन शब्द का मुख्य प्रयोग है, इसको श्रद्धान ऐसा ही है ऐसा प्रतीति ऐसी मान्यता ऐसी श्रद्धा इसको श्रद्धान कहते हैं। आत्मा का मूल स्वरूप जैसा है वैसा ही श्रद्धा में आना, उसी को सही श्रद्धा सच्ची श्रद्धा सम्यक श्रद्धा कहने में आता है। यानी आत्मा में जो श्रद्धा नाम का गुण है जो हमेशा परिणाम करता ही रहता है, वो तो अपने आप को जैसा है वैसा ही प्रतीति में नहीं लेकर के अन्यथा प्रकार से प्रतीत करता है, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बनिया हूं, मैं भारत वाला हूं, मैं गुजरात वाला हूं, महाराष्ट्र वाला हूं, कहीं भी वाला हूं, मैं भावनगर मुंबई वाला हूं, कैसा भी अन्य प्रकार से मैं ऐसा हूं, ऐसी मान्यता ऐसी श्रद्धा ऐसी प्रतीति को विपरीत श्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा है, अश्रद्धा है उसको कहते हैं। पर जैसा मूल स्वरूप में है वैसा ही मैं हूं ऐसी श्रद्धा हो जाना उसको सम्यक श्रद्धा कहते हैं, सही श्रद्धा कहते हैं। तो हम मूल में हम कहते हैं कि जैसा हमारा स्वरूप है वैसा सिद्ध पद में निर्वाण पद में जब संपूर्ण निरावर आत्मा हो जाती है तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसी प्रगट अवस्था हो जाती है जैसा मूल तत्व है। उसी से कहने में आता है कि हमारी आत्मा सिद्ध समान है। कैसे है सिद्ध समान? सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो हमारे सिद्ध समान आत्मा की श्रद्धा होना और वो श्रद्धा का परिणाम आत्मसन्मुख होके होना, श्रद्धा में स्वीकार हो गए तो श्रद्धा का परिणाम आत्मसन्मुख होकर के हो जाए, ऐसी श्रद्धा को सम्यक श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा हमेशा निर्विकल्प रहती है, उसको वर्णन करने में बताने में इतने विकल्प चलते हैं लेकिन प्रतीति भाव श्रद्धा भाव मान्यता हमेशा निर्विकल्प ही होती है, चाहे विपरीत हो चाहे अविपरीत। जैसे हम तो मनुष्य हैं और कर्मजनित पर्याय रूप हमारी श्रद्धा है जिसको पर्याय कहते हैं। आगम में क्या कहा है दिनागम में? मिथ्या श्रद्धा को पर्याय दृष्टि बोला है। तो जैसी कर्मजनित पर्याय जीव के संसार में होती है वैसा ही वो अपने को मान लेता है, उसको पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहने में आकर है। और मूल जो जैसा है सिद्ध समान ऐसे ही श्रद्धा होने से उसको दृढ़ दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि कहने में आता है। उसको दृढ़ दृष्टि कहो या उनको सम्यक दृष्टि कहो, दोनों ही एक बात है। थोड़ा कठिन पुणे को बोलना और सरल करेंगे, लेकिन ये कारण की बात है। बहुत नए आदमी को भी प्रारंभ में ही मोक्ष मार्ग किसको कहना और मोक्ष के लिए कहीं और मेरे नहीं भटकना पड़े, इसके लिए ये सिद्धांत सूत्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और त्रिकालिक अपर सिद्धांत जिसको कहते हैं, फिरने वाला नहीं फिरे ऐसा जो सिद्धांत है, इसलिए उस विषय कहीं भी समझ में गलत फहमी नहीं हो गए तो ख्याल में रखना है। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, सम्यक दर्शन की बात चली और सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं कि अपना आत्मस्वरूप के विषय में संशय नहीं हो, किसी भी प्रकार का संशय न हो, विपर्य नहीं हो, विपर्यास नहीं हो, विपर्य विपरीतता नहीं हो समझ में, और कहीं प्रकार का अन्यथापना नहीं हो, अनध्यवसाय जिसको कहते हैं। वो तीन प्रकार के जो ज्ञान के दोष होते हैं, ऐसा दोष नहीं होना वो नास्तिक लिया। संशय विपर्य और अनध्यास से रहित अपना आत्मस्वरूप जैसा है वैसा, अनंत गुण का एक रूप, कैसा है, अनंत गुणों का एक एक रूप, ऐसा मूल स्वरूप, उसकी सन्मुख ज्ञान होने से, क्या सन्मुख ज्ञान होने से, इसके सन्मुख ज्ञान का उपयोग होने से, ज्ञान के पर्याय में संवेदन की उत्पत्ति हुए, तभी आत्मज्ञान नहीं आने सम्यक ज्ञान उसको कहने में आता है। सम्यक ज्ञान है वो स्वानुभूति स्वरूप है जिसमें स्वयं का अनुभव है, ऐसा सम्यक ज्ञान होता है। तो उसमें अपने आत्मस्वरूप का लक्ष्य होता है। त्रिकालिक द्रव सामान्य आत्मस्वरूप का लक्ष्य होता है और अपना ज्ञान में स्वसंवेदन ज्ञान वेदन होता है। ज्ञान वेदन में ज्ञान ज्ञान का अनुभव करे, ज्ञान ज्ञान का वेदन करे, उसको स्व वेदन स्व संवेदन उसको कहने में आकार आता है। तो सम्यक ज्ञान है वो स्वसंवेदन स्वरूप है, वो आत्मज्ञान स्वरूप है। जैसा हमारा आत्मा है वैसा ही अनुभव में आता है, वो अनुभव ज्ञान है, जानकारी वाला मात्र जिसमें इंफॉर्मेशन हो गए, ऐसा ज्ञान नहीं है कि आत्मा द्रवगुण पर्याय से ऐसा है, उत्पाद विद्रोह से ऐसा है, द्रव क्षेत्र काल भाव से ऐसा है, शास्त्र में भी ऐसा आता है, हमको भी ऐसा मालूम पड़ता है, इसलिए वो आत्मा का सही ज्ञान हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि परसंगों के ज्ञान में भी ऐसी जानकारी हो सकती है। शास्त्र के शब्दार्थ भावार्थ नयार्थ के अनुकूल परलक्ष ज्ञान में प्रसन्न ज्ञान में भी ऐसी जानकारी हो जाती है, आत्मा के विषय में, नव तत्वों के विषय में। तो मान लेते हैं कोई कि हमको तो ज्ञान है, लेकिन इसको ज्ञान कहते हैं चलिए
अनुमान बना दें
ओ मेरे ज्ञान को मानना वो ठीक नहीं है, अज्ञान को ज्ञान मानना वो ठीक नहीं है। आत्मानुभव रूप जो आत्मज्ञान है, बस वही आत्मज्ञान है, उसी को छोड़कर दूसरा ज्ञान को आत्म ज्ञान माने, समय ज्ञान माने, सही ज्ञान माने, वो ज्ञान नहीं ठीक
है। लेकिन भाई पहले तो अनुमान में ऐसा चार पड़ा तो लेना पड़ेगा कि द्रव्य ऐसा है जिसमें गुणों है, वेद ऐसा है, अभेद ऐसा है, ऐसा अनुमान धारणा में तो पहले पकड़ना पड़ेगा ना।
पहले इतना प्रयास करेगा ऐसा जो बदल जाता है
जी,
तो हम जो है 60-70 साल के हो गए, अभी कहां तक पहला रहना है, कहां तक इस पहले को नहीं छोड़ना है,
छोड़ना पड़ेगा।
तो छूटेगा जब कि हमारा वजन छूट जाएगा तब, पहले वो भजन आ जाता है कि पहला पैसा करना पड़ेगा, पहला पैसा करना पड़ेगा। हमने अनंत बार ऐसा किया, तो अभी भी पहला ही करते रहे। क्या जिला को हमने नहीं पड़े भूतकाल में, हम पूर्व का स्वाध्याय किया है, उतना ज्ञान का शुरू समय 11-9 पूर्व तक का विख्यात अवस्था में स्वाध्याय अनंत बार हो चुका है हमारे लिए, लगते से होता है शास्त्र पठन से, पठन से नहीं होता है ऐसा क्या, लेकिन साथ में मंद कषाय रूप चारित्र से उपलब्धियां आती है तो ज्ञान खुल जाता है। तो मिथ्या अवस्था में 11-9 पूर्व तक पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हुआ इसमें, आत्मानुभव इसमें नहीं हुआ, नहीं हुआ, स्वसंवेदन नहीं आया, स्वरूपाश्रय नहीं हुआ। ज्ञान में स्वरूपाश्रय श्रद्धा स्वरूप का आश्रय करे तब तो सम्यक श्रद्धा, और ज्ञान स्वरूप का आश्रय करे तब तो सम्यक ज्ञान, और आचरण स्वरूप का आश्रय करे तब तो सम्यक चारित्र। मात्र तीनों आश्रय नहीं करने से पहले तीनों है वो सम्यक नहीं है, किंतु असम्यक है यानी मिथ्या है, ऐसी बात है। धारणा पहले नहीं होती है ऐसा कोई बताए तब तो वो बात ठीक नहीं है कि बिना धारणा भी ज्ञान हो जाता है, वो बात तो ठीक नहीं है। लेकिन धारणा होवे उसी वक्त लक्ष्य होना चाहिए कि आश्रय होगा तब ज्ञान होगा, धारणा से कोई काम चलने वाला नहीं है, धारणा से कोई काम बनने वाला नहीं है।
श्रद्धा मुझे करूँ
जी,
श्रद्धा ज्ञान से अज्ञान में श्रद्धा पैदा करना, ज्ञान पति का श्रद्धा का ज्ञान मार्ग
ऐसा है कि पैदा उत्पन्न होने में पैदा होने में तो तीनों का समय अंतर नहीं है, एक ही समय में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है तो उसी कारण स्वरूप की आत्म प्रतीति भी होती है, उसी कारण स्वसंवेदन भी होता है, और उसी कारण में शुद्ध रूप योग आत्मा में स्थिर हो जाता है तो स्वरूपासन चारित्र भी हो जाता है, और तब मोक्ष मार्ग चतुर्थ गुण स्थान में उत्पन्न होता है। पहले सीढ़ी मोक्ष मार्ग के प्रथम सीढ़ी ये है संगीत प्रश्न ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। अच्छा
आ गया जी, बुरी आ गया मंदिर का आ गया, यह मंदिर का आ गया
किसका जीव होगा क्या पता चले, अपने को बचने की बात है, ये हालत होती है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में समयांतर नहीं है। अब कारण कार्य का विचार करें तो आपके प्रश्न में दो बात है, पहले मतलब कारण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कार्य है, या कारण सम्यक ज्ञान है या कारण सम्यक दर्शन है, कार्य कारण कार्य में कौन सी परिस्थिति है।
तो इस विषय में शास्त्र में दोनों प्रकार के वचन मिलते हैं। जब सारे प्रश्नों की प्रधानता से कोई प्रकरण चलता है तो उसको समय ज्ञान का कारण बताया जाता है। जैसे अज्ञान नव प्रोग्राम पढ़े फिर भी समीर दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान बोल दिया, तो वहां समीर दर्शन की प्रधान किंतु मुमुक्षु जीव को ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होता है। क्यों? कि जो आत्मा ज्ञान में नहीं आया तो श्रद्धा किसकी करें? वो न्याय समय सार के 17-18 गाथा में आचार्य महाराज ने दिया है कि जाने बिना किसी की श्रद्धा नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो खरगोश के सिंह की भी श्रद्धा हो सकती है और व्योम पुष्प आकाश के कुसुम की भी श्रद्धा हो सकती है कि जो संभवित नहीं है। इसलिए बिना जाने किसी की श्रद्धा नहीं होती।
तो
आत्मस्वरूप आया उसकी नहीं बिल्कुल प्रतीति कैसे होती है? प्रैक्टिकल साइड उसका क्या है कि जो अनुभव होता है स्वानुभव होता है वो भेद ज्ञान पूर्वक होता है। तो प्रोसेस तो ज्ञान का हो गया, भेद ज्ञान में पूर्व प्रोसेस तो भेद ज्ञान का हो गया। जब अनुभव होता है तो उस अनुभव भी ज्ञान की पर्याय है और ज्ञान में जो आत्मा अनुभव गोचर हुआ जैसा अनुभव में आया वैसा ही मैं हूं ऐसी प्रकृति को सुनने दर्शन मा कहने में आता है। तो अनुभव पूर्वक प्रतीत होती है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होता है। इसलिए कार्य कारण के लॉजिक में ज्ञान कारण है और श्रद्धा कार्य है। ऐसा
सुगणी श्रद्धा है
143। चर्चा बहुत चली थी और उस चर्चा के संदर्भ में ही ये बात गुरुदेव ने फरमाई थी कि आप लोग इस बात को गलत समझ रहे हो। क्या कोई बात दृष्टि प्रकाश के 143 नंबर का सोगानी जी का वचनाम है। आपको पूरी शांति करना है हमारे क्षेत्र में से
दूरदर्शन
बात तो ऐसी चली है वहां इस प्रकार की समझ में भूल हो सकती है। वास्तव में वो भी ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि सुगानी जी का हमको तो घनिष्ठ परिचय था। इस विषय में हमारी भी चर्चा चल चुकी है इसलिए हमने तो ये उत्तर दिया था
से अशोका देवी का अभिप्राय हम समझते हैं। ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धा होता है, श्रद्धा पूर्वक ज्ञान नहीं होता है, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर जो चर्चा आगे चली तो गुरुदेव के सामने भी आई थी, उन्होंने सत्रह अठारह गाथा का दृष्टांत भी दिया था। देखो समय साधनों पर इस तरह से लिया है, क्योंकि अपन यहां से पढ़े। त्रिकाली में प्रसन्न में ज्ञान कारण है कि दृष्टि कारण है, तो प्रश्न क्या होगा? प्रसन्न मैंने आश्रय करना, तो हाँ ये प्रश्न ही नहीं चला है मूल में कि ज्ञान का कारण श्रद्धा है या श्रद्धा का कारण ज्ञान है, वो प्रश्न तो चला ही नहीं है। तो टू दी पॉइंट अपना प्रश्न बात क्या चलता है कि श्रद्धा कारण है इससे कारण इससे ज्ञान रूपी कार्य होता है, ज्ञान कारण है इससे श्रद्धा रूपी कार्य होता है, तो यहां तो ये प्रश्न ही नहीं चला है। आश्रय करने में कौन कारण बनता है? स्वरूप का प्रसन्न प्रसन्न जाना मैंने आश्रय कर जाना है आपके ग्राहकों को इससे अनुभव कर, तो ऐसा जो परिणाम होता है स्वरूप में व्यापक व्यापकता का, उसमें मुख्य कारण काम कौन करता है, ज्ञान करता है या श्रद्धा करता है? तो आश्रय तो सभी गुण करते हैं, सर्वगुणांश। तो आप जब समय दर्शन होता है तो अनंत गुणात्मा का आश्रय करते हैं, लेकिन आश्रय करने में प्रधानता श्रद्धा की विशेष रूप से है, इसलिए कि ये गुण पूरा का पूरा आत्मा का आश्रय करते हैं, जबकि दूसरा गुण आंशिक रूप से आश्रय करते हैं। पूरा परिणाम शुद्ध नहीं होता तो प्रथम स्थान है सभी गुणों का, लेकिन श्रद्धा का पूरा पूरा तो मैंने उत्तर दिया कि मुख्य तौर से तो दृष्टि ही कारण है, लेकिन किसमें? आश्रय करने के बाद में फिर ज्ञान को भी कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान भी आश्रय करता है, चारित्र को भी कह रहे हैं, अभी आगे जाकर चारित्र भी आश्रय करता है, और पुरुषार्थ को भी कह रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ भी स्वरूप का आश्रय करता है, मेरी गुण से सम्मत होता है, इसलिए उसका भी आश्रय कहा जाता है। दोनों साथ में ही है, एक समय में है दोनों। दृष्टि प्रसर जाती है, अगर सिद्धांत पर जोर देते हैं तो दृष्टि प्रसर जाती है तो ज्ञान भी हो जाता है, तो सिद्धांत की मुख्यता से ऐसा भी बोला जाता है। ज्ञान की प्रधानता करें तो समय साक्षी सत्तर अठारह गाथा के पास से देखें, तो प्रधान निरीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दोष नहीं है। जैसे भगवान की वाणी में दोनों नहीं का कथन आता है, सभी शास्त्रों में दोनों नहीं का कथन आता है, निश्चय नहीं की मुख्यता से भी वर्णन आता है, व्यवहार नहीं की मुख्यता से भी प्रतिपादन आता है, तो ऐसे मुख्यता से प्रतिपादन करने में कोई दोष नहीं है। सम्यक कैसे हो ये बात रहस्य है, इसका रहस्य पकड़ने में आ जाए तो सभी गुणों का परिणाम सम्यक हो जाएगा। अगर सम्यक तो समझ में नहीं आएगा तो एक बात भी समझ में नहीं आएगी। चाहे किसी प्रत्यक्ष कारण को पा करके या चाहे किसी परोक्ष कारण को पा करके, दृष्टि हो या सर्वज्ञ हो या निर्ग्रंथ गुरु हो, भाव लिंग संत छठे सातवें स्थान में जुड़ने वाले, इसका समय को समझने में आवे तब ही समझने वाले को सम्यक मार्ग की प्राप्ति होती है। अगर इसका सम्यक समझने में नहीं आए तो सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहने का कोई मतलब नहीं रहता है, निरर्थक हो जाता है।
नहीं, उसमें एक बार कृपाल देव का सुंदर वचना मत है, प्रकरण 504 हमने बात लिया है। कई बातें तो शास्त्र में देखने को नहीं मिले, ऐसी बात उन्होंने कही है, हमने तो शास्त्र में नहीं देखी, इतना शास्त्र पढ़े हैं फिर भी ऐसी बातें इसमें है। कोई प्रकट कारण को अवलंब करके, प्रकट कारण में प्रतिमा भी हो भगवान के, सब साफ हो, उसको अवलंबन करके, उसका विचार करके, परोक्ष चले आते ऐसे सर्वम पुरुष को भगवान सर्वम देव जिनेन्द्र परमात्मा को अभियंत्र, सर्वज्ञ पुरुष को मात्र सम्यक दृष्टि बने भी पहचानने में आए तो उसका महत्फल है। क्या पहचानना है? सम्यक को पहचानना है। समोसरण में वातावरण कैसा होता है इसका अंदाजा आप इधर नहीं लगा सकते, बिल्कुल धर्ममय वातावरण होता है, धर्म सभा है नहीं मानो, पर धर्मनाथ विराजमान है, भगवान धर्मनाथ विराजमान है, इनके अंग अंग में परिपूर्ण निर्दोषता, वितरागता, अंतर्मुखता और परिपूर्ण आत्म शांति जलती है, छलकती है, क्या छलकती है, ऐसे भगवान विराजमान है। कोई समोसरण में जो करोड़ों जीव होते हैं, कितने लाखों नहीं होते, बाल योजन के समान करोड़ों होते हैं, अवधान हो जाता है आप, किसी को गिरती नहीं होती, वो करोड़ों जीवों में भी एक जीव को भगवान नहीं ऐसा नहीं लगे, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि ये भगवान नहीं है। हमने भी भगवान मान करके उसकी पूजा भक्ति आरती स्तुति सब कुछ किया है, बाकी क्या बात रहेगी, ये कृपा को देखो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक तो उसका नहीं पहचाना है, ये चीज बाकी रह गई है। अगर वो पहचाना जाए तो इसका महत्फल है, इसका फल निर्वाण फल है, महत्फल मैंने सर्वोत्कृष्ट फल है। अगर ऐसा न हो तो सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कहने को आत्मा संबंधित कोई फल नहीं आएगा, अनात्मा संबंधित फल आएगा, मैंने पुण्य का फल आएगा, पुण्य का फल आएगा, पुण्य संबंधित इसका फल आएगा, हमने पूजा भक्ति किया तो हमको पुण्य फल मिला, लेकिन आत्मा संबंधित कोई फल नहीं मिल सकता। ऐसा हमको अनुभव में आता है, क्या फरमा है, ऐसा हमको अनुभव में आता है, बात करते नहीं है, बात की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है हमारा। प्रत्यक्ष श्रवण पुरुष को भी वो पैसा हो तो बाकी अपरोक्ष वाले के, क्योंकि प्रतिमा जी देखा हमने, शास्त्र में भी अनंत दशा का फिर भी समय प्रसंगे नहीं इसका, अब कहते हैं कि प्रत्यक्ष धर्म सभा में प्रत्यक्ष श्रवण पुरुष को भी कोई कारण से, कोई विचार से अवलंबन करके सम्यक दृष्टि स्वरूप रूप से भी न जाना हो तो भी उसका आत्म प्रत्ययी फल नहीं आता, परमार्थ से उसकी सेवा असेवा से, सेवा किया भक्ति किया या नहीं किया, इसमें कोई जाति भेद नहीं है, मेरे दोनों एक सा है। भगवान की हमने बहुत सेवा की थी समोसरे में, कोई बोले हमने तो नहीं की थी, कि दोनों शरीर का है,
अगर सम्यक हो तो उसको नहीं पहचाना तो। और एक सर्वत्र का रूप ऐसा आया समोसरण में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी तर्क लगाने की गुंजाइश नहीं है, अवकाश नहीं है। मुनि को हम ये कहेंगे कि वो आहार क्यों करते हैं, आत्मा तो अनाहारी पदार्थ है। आत्मा जो अनाहारी पदार्थ है तो मुनि एक बार भी भोजन क्यों करते हैं, भले एक बार भोजन करते हैं। ये तर्क की गुंजाइश है, सम्यक दृष्टि में तो हजार माना निकलेगा कि गृहस्थी क्यों कैसा क्यों है, वो व्यापार क्यों करता है, राजा क्यों है, दलित्री क्यों है, खाना कूड़ा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, सब बात आएगी। मुनि में भी शंका कर सकता है, लेकिन सर्वज्ञ में शंका की कौन सी गुंजाइश है, कोई अवकाश नहीं है। फिर भी हमने सर्वज्ञ को सर्वज्ञ को सर्वज्ञ पने तो नहीं पहचाना, लेकिन सम्यक रूप में भी नहीं पहचाना, तब इसका सेवा प्रशंसा सेवा भक्ति पूजा जो भी इसके आयु का कोई